समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, टुडे इज 17th ऑफ सितंबर, अ डे टू ऑनर द डिवाइन आर्किटेक्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज लॉर्ड विश्वकर्मा। The festival is widely celebrated by engineers, architects, manufacturing professionals and craftsmen across various parts of our country and also in Nepal, emphasizing the value of all forms of labor and seeking divine blessings for progress in their professional endeavors. Prime Minister Narendra Modi is also celebrating his 75th birthday today, a milestone being celebrated with launch of several welfare programs and very many new schemes. Our dateline today will be covering these two events as we begin with news making headlines at this hour of the day.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्ति परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के भैंसला गांव में भारत के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की नींव भी रखी।
वर्ल्ड लीडर्स ग्रीट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन हिज 75th बर्थडे।
केंद्र ने तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 342 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया।
वैष्णो देवी यात्रा रिज्यूम्स आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड फॉर 22 डेज ड्यू टू बैड वेदर एंड लैंडस्लाइड्स।
और चंडीगढ़ में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
And now, Mukesh, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, as I said that earlier, we will talk about Vishwakarma Jayanti. On this auspicious day, we bring you a special segment dedicated to the divine architect, the celestial engineer, and the inspiration behind all creation, Lord Vishwakarma. Yes, today is Vishwakarma Jayanti, a day of celebration for all artisans, engineers, craftsmen and creators across the nation. Let us begin our tribute.
जी बिल्कुल। भगवान विश्वकर्मा परंपरा के अनुसार दिव्य वास्तुकार हैं। उन्होंने देवताओं के महलों और पौराणिक शहरों जैसे द्वारका, लंका और देवताओं के खगोली हथियारों का निर्माण किया था, लेकिन उनका प्रभाव पौराणिक कथाओं में समाप्त नहीं होता है। वो हर निर्माता, हर कार्यकर्ता और हमारी भूमि के हर प्रवर्तक के हाथों में रहता है।
From the skilled carpenter in a village workshop to the modern-day engineers building India's highways and satellites, Vishwakarma Jayanti is their day. And today, on this sacred occasion, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has extended his heartfelt wishes to the nation.
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में सृजन के सभी वास्तुकारों को बधाई देते हुए कहा कि नए निर्माण में लगे कर्मयोगियों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत एक मजबूत, समृद्ध और सक्षम भारतवर्ष बनाने में अमूल्य भूमिका है।
Yes, traditionally, today is also a day when tools, machines and instruments are worshipped in homes, factories and workshops. Workers don new clothes, clean their workspaces and offer prayers for productivity and safety in the coming year.
जी बिल्कुल। लोहार और वेल्डर से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तथा आर्किटेक्ट्स तक विश्वकर्मा पूजा व्यवसायों को स्थानांतरित करता है और हम सभी को रचनात्मकता और समर्पण की भावना से बांधता है। उसके लिए विश्वकर्मा पूजा एक पवित्र दिन है। प्रत्येक वर्ष उपकरण और मशीनों की पूजा होती है और ये हमें याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत के माध्यम से हर काम में सफलता मिलती है।
What a beautiful thought, Mukesh. And it also reflects the Karma Yogi spirit that Prime Minister Modi referred to in his message. In a country striving for Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, this dedication of our workers, engineers and creators is the real foundation of our nation's growth. Lord Vishwakarma is the only deity in the Hindu pantheon who is worshipped by the working class across religions and castes.
बिल्कुल अनुजा, उनका जन्मदिन न केवल भारत में बल्कि नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में भी मनाया जाता है. शुद्ध सोने से बने लंका का सुनहरा शहर भगवान शिव के लिए विश्वकर्मा ने ही डिजाइन किया था.
Really fascinating, isn't it, Mukesh?
जी बिल्कुल.
Now let us remember, every tool we hold, every machine we run, every idea we build is a tribute to Vishwakarma. Let's honor every worker, every creator and every Karmayogi for their truly shaping the nation. We wish you and your families a very happy Vishwakarma Jayanti. May this day bring innovation, prosperity and safety to all our endeavors. And now from humble beginnings to becoming one of the most influential political figures in the world, Narendra Modi's journey has been extraordinary. As India's Prime Minister, his leadership has drawn admiration and curiosity. But beyond the headlines and policies, who is the man behind the office and what has been his impact on India and the world? In this special story, we bring you voices of select eminent personalities who reflect on Narendra Modi, the person and the Prime Minister.
That Prime Minister Modi is possibly the best Prime Minister India has ever had. Prime Minister Modi has almost made sure that almost all Indians have a roof over the head, water in the tap, power in the switch, a toilet in the house, a gas stove, a bank account, money in the bank, an internet connection, a mobile phone, food on the table, education for children, a road to the house, and health insurance.
These words of TV Mohandas Pai, an entrepreneur, summarize the impact of Prime Minister Narendra Modi in India. He has taken care of the basic needs of Indians in very large numbers. He has also been a successful global leader. Martin Schulz, former president of the European Parliament, said,
and on international levels, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world.
Even PM Modi's foreign policy has kept the interests of weaker sections at its heart. Ambassador Dr. Mohan Kumar from the policy think tank RIS said,
he has also made sure that the foreign policy serves the interests of the weaker sections of India. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs.
N. Chandrasekharan, the chairman of the Tata Group, recalled PM Modi's tremendous focus in a meeting.
The most striking thing in the very first meeting was he was completely in the present.
Sudha Murthy, author and philanthropist, expressed admiration that PM Modi is working like a youngster even at the age of 75 years, with a sense of duty towards humanity.
He worked very hard towards the nation and still working like a youngster even though he's 75. Loka hitam mama karaniyam is probably his mantra and which he has followed throughout his life.
Narendra Modi's story is more than just politics. It's about a vision for India's future, a vision that has sparked hope, challenged traditions and reshaped dreams. A vision that continues to write the story of India's tomorrow. Right, and on the occasion of PM's 75th birthday, a film, Chalo Jeete Hain, is being screened all over the country today. Our correspondent across the country spoke to the viewers about the film.
और इस बारे में हमने लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए केरल का दौरा किया है, तो केरल के लोग क्या इस बारे में बोलते हैं, आइए सुनते हैं.
Sri Ganesh from Kannur, Northern Kerala, expressed his happiness that the film conveys the messages Swami Vivekananda and portrays the life of the Prime Minister. Busy with the work today, he said he has booked the ticket to watch the film tomorrow. Meanwhile, Sneha, an economics student from St. Teresa's College, Kochi, said she plans to watch the film over the weekend. Let's listen to their words.
Hi, I'm Sneha and I'm from Kerala. Actually, I wanted to see the film today itself. But since I had my classes, I wasn't able to watch it. So I'm planning to watch Chalo Jeete Hai in the weekend only. And this re-release is a good thing, especially for the students.
And after Kerala, now let us go to West Bengal.
Film bahut hi inspirational tha. From this film, we understood that true leadership emerges from small acts of kindness and giving respect to others. This film showed that through Naru's story, we understood that through selfless service, honesty and empathy, we can give real purpose to life. And lastly, I would like to add, we as students can also contribute like Naru through helping classmates, giving service to community and doing what is right and what welfare for others. I am Ayush Bhattacharji from class 11B of PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake.
I am Vishita Ghosh, PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake and Nomong Shri Chhatri. Aaj amader mananiyo pradhanmantri Shri Narendra Modi jono. Aaj ei bishesh dine amra je chobi ta dekhlam chalo jite eta onek choto bela kotha jana. Je kibhabe uni shei choto naru theke aaj amader desher pradhanmantri. Ei film jese ki aaj
sabko pata hai Shri Narendra Modi hamare desh ke pradhanmantri ke charan ke upar aadharit hai. ये बहुत ही प्रेरणा दायक फिल्म चलो जीते हैं। इससे हमारे केंद्रीय विद्यालय का भी कुछ इसी प्रकार का उद्देश्य है, शिक्षा आइए संभव चाहिए। हम सभी नागरिक को इससे प्रभावित होकर दूसरों की सेवा करने और दूसरों की भला करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, जो भी जीते हैं दूसरों के लिए जीते हैं और उनसे प्रभावित होकर वे आज प्रधानमंत्री के रूप में देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार हम सबको प्रेरित होकर अच्छी काम करने चाहिए।
और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या खास है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम चलेंगे महाराष्ट्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है, और नागपुर से क्या खास है तो जानते हैं हमारे सहयोगी हिमांगी कुलकर्णी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन विविध सेवा संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविरों और जनकल्याण अभियानों का आयोजन किया गया है। सेवा पखवाड़े की शुरुआत के अवसर पर आज नागपुर के 75 चौक में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत सार्वजनिक पार्क, अस्पतालों, मैदानों, साप्ताहिक बाजारों, चौराहों, मूर्तियों और प्रमुख सड़कों की सफाई की गयी। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इसमें सक्रिय सहभाग लिया। इसके साथ ही शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के अंतर्गत नागपुर सहित पूरे राज्य में विभिन्न नागरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना के सम्मान में एक विशेष संजीवनी स्वास्थ्य अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य में जरूरतमंद लोगों को नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें नेत्र परीक्षण, दवाइयां, निःशुल्क सर्जरी, चश्मा वितरण तथा नेत्रदान के प्रति जनजागृति शामिल है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
And now we take you over to Manipur, where in Manipur, due to different altitude levels of hill ranges, the climatic condition also varies within the state, and therefore some plants and animals are found in a particular place. The GI tagged chili plant, which is a Seraka Khong chili, is one of them. It is grown only at Seraka Khong village in Ukhrul district. In aim to promote and preserve this unique chili plant, Seraka Khong festival is organized annually at Seraka Khong village in Ukhrul. This year, the festival kicked off from yesterday, and let's hear more from our Imphal correspondent, J.J. Thokcham.
Sirarakung chili, also known locally as Sirarakung Hathai, is grown only at Sirarakung village of Ukhrul district of Manipur, which is around 67 kilometers far away from capital city Imphal. This unique chili has a distinctive taste and moderate heat. Most of the household at Sirarakung village engage in chili cultivation. The villagers said that there is a legend on how Sirarakung chili or Sirarakung Hathai is only found and grown in their village. village and said that the chili plant is a gift from the god. Agro scientists commented that the Sirarakhong village is suitable in terms of its altitude and climatic conditions for Sirarakhong chili. This chili product is now available across the world, including online markets. To promote this chili, every year Sirarakhong Hathai Festival is organized at Sirarakhong village. This year, the 3 days 14th Sirarakhong Hathai Festival kicked off at the village from yesterday. The festival was inaugurated by Manipur's Commissioner of Horticulture and Soil Conservation, Thang Thui Lung Pamai, IAS. In his inaugural speech, the commissioner said about the uniqueness of the natural color of Hathai. He said,
"It is a certification that this chili is very unique and it is nowhere else to be found. And the color is the most important aspect or criteria for giving this unique certification of GI Tech. The color of our Hathai is natural and it could be used for many, many food coloring. Therefore, there lies the value, the aroma and the other qualities, there are the contents. There's a content of zinc, capsaicin, other qualities are there. But the uniqueness lies in the color, which we should be even to in years to come to maximize our extraction and bring about more benefit to the farming community here."
The 14th edition of the Sirarakhong Hathai Chili Festival not only celebrates a highly prized GI Tech chili, but also seeks to foster economic opportunity, environmental awareness, and culture and pride. This festival will boost recognition for Sirarakhong Hathai both within India and beyond. J.J. Thaksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और अनुजा, आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। उस वक्त हैदराबाद स्टेट में होने के कारण महाराष्ट्र का मराठवाड़ा प्रांत भी आज ही के दिन निजाम के शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हुआ था। वैसे तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए हैदराबाद स्टेट की जनता को 13 महीने और 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और फिर से स्वतंत्रता संग्राम छेड़ना पड़ा था।
हैदराबाद प्रांत पर उस वक्त निजाम की सत्ता थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में फैले हुए निजाम स्टेट की जनता को स्वतंत्रता के लिए एक और संग्राम लड़ना पड़ा। छत्रपति संभाजी नगर के सीनियर एडवोकेट अनंत उमरीकर ने उन दिनों की स्मृतियों को आकाशवाणी के साथ साझा किया।
15 अगस्त को भारत जरूर स्वतंत्र हुआ, लेकिन निजाम संस्थान में महाराष्ट्र का जो भाग था वो भाग स्वतंत्र नहीं हुआ था। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, भारत का कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 प्रांत जो निजाम संस्थान के हिस्सा भी थे वो स्वतंत्र नहीं हुए थे। उनको स्वातंत्र्य मिला 17 सितंबर 1948। ये 12-13 महीनों का जो वक्फा है, इन दिनों में हम पराधीन थे और इस पराधीनता से हम लोगों को बहुत बड़ा लड़ा देना पड़ा। हमारे कई लोग पकड़े गए, जेल में गए, उन्होंने सत्याग्रह किया। कई लोग भूमिगत हुए, निजाम और रजाकार इन्होंने बहुत जुल्म ढाए थे। ग्रामीण विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर उनका जुल्म हुआ था, वो तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन शहरों में ऐसे हजारों कुटुंब थे, ये सब लोगों को पलायन करना पड़ा। इन लोगों को निजाम संस्थान के बाहर पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, जो भाग हो, उन्होंने बहुत मदद की। उनको पूरी सहायता बाहर के लोगों ने दी थी, हम आज भी उनके लिए शुक्रगुजार हैं।
हैदराबाद स्टेट की जनता ने स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में किए आंदोलन को सरदार पटेल ने की हुई पुलिस एक्शन से सफलता मिली और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। 13 महीने और 2 दिन की प्रतीक्षा के बाद मिली इस स्वतंत्रता को यहाँ की जनता पूरे जोश और उल्लास के साथ मना रही है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
और आप चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां पर क्या हलचल है।
Yes, Mukesh, in women's cricket, India will look to make a strong comeback in the second of the 3 ODI match series against Australia in Chandigarh today. And in news, Justin, India's star javelin thrower and defending champion Neeraj Chopra has qualified for World Athletics Championships 2025 men's final today with his first attempt of 84.85 meters. Neeraj is aiming to become the 3rd male javelin thrower in history to defend the World Championships gold title, which he had clinched in the 2023 edition in Budapest. The qualification mark was 84.5 meters. Olympic champion and Pakistani player Arshad Nadeem is also participating in the World Athletics Championships 2025 in Tokyo.
और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने कल रात अबूधाबी में अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की 154 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पारी निर्धारित 20 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। नासूम अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज दुबई में पाकिस्तान का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा।
And now coming to the business news, benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty opened on a positive note and extended their initial gains to end almost 0.4% higher today. The Sensex surged 313 points to close at 82,694, while Nifty advanced 91 points to settle at 25,330. In the global crude oil market, Brent crude was trading over 0.6% down at $68.02 per barrel.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरियार के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामास्वामी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। पेरियार तर्कवादी विचारक, लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वो ऐसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर थे जो सहजता से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर सकता था और अपनी इसी खासियत की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में वो समाज के हर वर्ग के लोगों को लामबंद करने में सफल रहे।
अपने बेहद करीबी दोस्त सी राजगोपालाचारी की वजह से पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया। स्वाधीनता आंदोलन को लेकर पेरियार की प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन सभी 29 पदों से इस्तीफा दे दिया था जिन पर वे आसीन थे। इतना ही नहीं, पेरियार ने पारिवारिक व्यापार भी बंद कर दिया था उस वक्त, जबकि कारोबार से उन्हें 20,000 रुपए सालाना की कमाई होती थी। उन दिनों एक औंस सोने का मूल्य 10 रुपए भी नहीं था।
पेरियार ने खादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें सजा भी हुई। पेरियार ने भगत सिंह के राजनैतिक विचारों की प्रशंसा की और 29 मार्च 1931 को अपनी पत्रिका कड़ी अरसू में संपादकीय के माध्यम से उन्होंने भगत सिंह के बलिदान की सराहना की।
पेरियार ने महिलाओं की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर सवाल उठाया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पेरियार ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया और सभी क्षेत्रों में उनके लिए 50% आरक्षण का मुद्दा उठाया। स्त्री पुरुष समानता के कट्टर समर्थक पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
आज ही के दिन 1940 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने की पेशकश की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया जिसके तहत चुनिंदा व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से ये घोषित करना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना गलत है। वास्तव में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने भारत की निर्वाचित प्रांतीय सरकारों से परामर्श किए बगैर 3 सितंबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया।
गांधी जी का मत था कि एकमात्र उपयुक्त चेष्टा अहिंसक रूप से युद्ध का विरोध है। सत्याग्रहियों को चुनने का काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया था। विनोबा भावे 17 सितंबर 1940 को वर्धा में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप उन्हें 1940 से 41 के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1958 में विनोबा भावे को नई तरह की सामाजिक क्रांति के प्रति समर्पण और सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।
1982 में विनोबा भावे काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना और दवाएं लेना बंद कर दिया। 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। एक साल बाद सन 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
और अब हम याद करते हैं भारत के जाने माने वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमण को। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृति के संगीतकार के रूप में उनकी विशेष पहचान थी।
राइट, ही इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हिज ट्रेंडिंग परफॉर्मेंसेज इन कर्नाटक म्यूजिक एंड ही होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विद द चौड़ाई मेमोरियल नेशनल लेवल अवार्ड एंड थ्रू हिज वर्क एज अ म्यूजिशियन, कंपोजर एंड टीचर by his ceaseless innovation he has given a new dimension to Carnatic music. His violin rendition, let's hear a little excerpt from his violin rendition. Expanded the style of violin playing by inventing a whole new technique that is designed to best suit the needs of Indian classical music and establishing a unique style that came to be known as Lal Gudi Bani. Jayaraman composed several kritis, tilanas and varnams and dance compositions which area blend of rag, bhav, rhythm and lyrical beauty. And for his outstanding work in his field, Lal Gudi Jayaram has been bestowed upon with Padma Bhushan and Padma Shri.
और उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने संगीत की प्रस्तुतियां दी थी। भारत सरकार ने इन्हें भारतीय संस्कृति प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में रूस भी भेजा था और वर्ष 1965 में एडिनबर्ग त्योहार पर प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन इनके तकनीकी रूप से काफी प्रभावित हुआ और इन्होंने इन्हें अपना इतालवी वायलिन भेंट किया था।
राइट, एंड अनदर पर्सनालिटी वी पे ट्रिब्यूट टू टुडे इज गगनेन्द्र नाथ टैगोर। He was an Indian painter and cartoonist of the Bengal school, and along with his brother Abanindranath Tagore, he was counted as one of the earliest modern artists in India. Gagendranath pioneered experiments in modernist painting. Partha Mitter describes him as the only Indian painter before the 1940s who made use of the language and syntax of Cubism in his painting. And next personality we pay tribute to today is Anant Pai, popularly known as Uncle Pai, who was an Indian educationalist and a pioneer in Indian comics. He is most famous as the creator of two comic book series. One is Amar Chitrakatha, Mukesh, aapko zarur yaad hoga.
Bilkul.
Which retold traditional Indian folk tales, mythological stories and biographies of historical characters. Amar Chitrakatha means immortal picture stories, and as the name suggests, these comic features India's own immortal heroes, its mythological gods and historical leaders as their protagonists. And another series, another comic book I was talking about is Twinkle, that was founded by Anant Pai.
और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी में से एक वामन राव बलिराम लाखे को हम याद कर रहे हैं। 1913 में लाखे जी ने अपना कार्यक्षेत्र सहकारी आंदोलन को बनाया था, जिससे वे जीवन पर्यंत जुड़े रहे। सहकारिता आंदोलन के द्वारा दुखी और शोषित किसानों की सेवा और सहयोग करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 1915 में रायपुर में होमरू लीग की स्थापना की गई। वामन राव बलिराम लाखे जी उनके संस्थापक थे और छत्तीसगढ़ में शुरू जो राजनीतिक चेतना फैली उसमें लाखे जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपना सारा राष्ट्रीय आंदोलन और सहकारी संगठन में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था।
Today is also the birth and day of Sita Kant Mahapatra, an Indian poet and literary critic in Uriya as well as in English. He was awarded the 1974 Sahitya Academy Award in Uriya for his poetry collection Sabdara Akasha. He was awarded the Gyanpith Award in 1993 for outstanding contribution to Indian literature. And today we also wish a very happy birthday to Ravi Chandran Ashwin. Ashwin has been hailed as one of India's greatest match winners, consistently delivering performances that secured victories for his team. Described as a wizard and a scientist for his innovative approach to spin bowling, Ashwin created variations that perplexed opponents and challenged the game's conventions. Akashvani Parivar wishes you a very happy birthday, Ashwin.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।